शाम का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शकुंतला ने उस दिन सुबह ही तय कर लिया था कि आज वो अपने बच्चों के साथ पूरा वक्त बिताएगी, बिना किसी टेंशन, बिना किसी रोक टोक के। चलो आज बाहर चलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रम्या तो तुरंत उछल पड़ी, सच में माँ, कहाँ? सरप्राइज, शकुंतला ने आंख दबाई। कुछ देर बाद तीनों एक सुंदर से आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े थे। कांच की दीवारों के अंदर रंग बिरंगी लाइट्स और अलग अलग फ्लेवर्स की खुशबू माहौल को और भी आकर्षक बना रही थी। अंदर जाते ही रम्या की आंखें चमक उठीं। वाओ माँ, ये जगह तो बहुत अच्छी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी आइसक्रीम पसंद है। शकुंतला हल्का मुस्कुराई। क्यों नहीं, जब बच्चे साथ हों तो सब अच्छा लगने लगता है। विशाल चुप था, वो बस इधर उधर देख रहा था, जैसे मन मार कर आया हो। तीनों एक टेबल पर बैठ गए। वेटर आया तो रम्या ने तुरंत अपने लिए चॉकलेट फज ऑर्डर किया, विशाल ने स्ट्रॉबेरी स्कूप लिया और शकुंतला ने वनीला। ऑर्डर आने में थोड़ा वक्त था, तभी शकुंतला की नज़र सामने बैठी एक टेबल पर गई। वहाँ एक लड़का बैठा था जो बार बार रम्या की तरफ देख रहा था। शुरू में शकुंतला ने अनदेखा किया, लेकिन जब उसकी नज़रें बार बार रम्या पर टिकने लगीं तो शकुंतला का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसी वक्त आइसक्रीम आ गई। जैसे ही रम्या खुशी से अपना बाउल उठाने लगी, शकुंतला ने हल्के से कुर्सी खिसकाई और रम्या को अपनी तरफ से ढुमा दिया, ताकि उसका चेहरा उस लड़के की तरफ ना रहे। रम्या थोड़ी हैरान हुई, माँ, लेकिन शकुंतला ने कुछ नहीं कहा। ये छोटी सी हरकत विशाल की नज़रों से बच नहीं पाई। उसने तुरंत माँ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ नज़र आने लगा। अब बात यहीं से शुरू होने वाली थी। विशाल ने कुछ सेकंड तक माँ को ध्यान से देखा, फिर अचानक कुर्सी पर सीधा बैठ गया। माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? उसकी आवाज़ अब साफ और थोड़ी सख्त थी। रम्या चौंककर उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ भैया? लेकिन विशाल की नज़रें सिर्फ शकुंतला पर थीं। हर बार हर जगह आप हमें ऐसे घुमा देती हैं, छुपा देती हैं, जैसे हम कोई गलती कर रहे हों, उसने कहा। शकुंतला थोड़ी असहज हुई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस बस क्या, विशाल ने बात काट दी, वो लड़का सिर्फ देख रहा था, इसमें ऐसा क्या था कि आपने रम्या को उसकी तरफ से घुमा दिया? रम्या पूरी तरह कन्फ्यूज थी। कौन लड़का? वही सामने वाला, विशाल ने हल्के इशारे से बताया। रम्या ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला ने तुरंत रोक दिया, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। देखा, विशाल ने गहरी सांस ली, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमें खुलकर जीने ही नहीं देती। शकुंतला अब थोड़ा सख्त हो गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। नहीं माँ, विशाल ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आपको सिर्फ डर पता है, सही गलत नहीं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। रम्या ने माहौल संभालने की कोशिश की, भैया प्लीज, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। लेकिन विशाल अब रुकने वाला नहीं था, मुझे यहाँ आना भी नहीं था, उसने साफ कहा। नानी ने बोला इसीलिए आ गया, लेकिन यहाँ आकर भी वही रोक टोक कंट्रोल। शकुंतला के चेहरे पर चोट साफ दिख रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कंट्रोल करती हूँ? हाँ, विशाल ने बिना हिचक कहा, और सिर्फ मुझे नहीं, रम्या को भी। किसी से बात करो तो प्रॉब्लम, कोई देख ले तो प्रॉब्लम, आखिर क्यों? रम्या अब चुप हो गई थी, उसकी नज़रें धीरे धीरे नीचे झुक गईं। शकुंतला ने उसकी तरफ देखा, फिर विशाल की तरफ। मैं जो करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। भलाई? विशाल हल्का सा हंसा। या आपका डर जो आप हम पर थोप रही हैं? ये सुनकर शकुंतला कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, और वहीं से बात और गहरी होने लगी। उनके बीच सिर्फ शब्द नहीं, सालों का दबा हुआ एहसास बाहर आने लगा। शकुंतला कुछ पल के लिए चुप हो गई, उसके हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जैसे हवा में ही रुक गया। विशाल की बात सीधी दिल में लगी थी, उसने धीरे से चम्मच टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ विशाल, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें हल्का कंपन था। मैं बस संभालने की कोशिश करती हूँ। विशाल हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी तंज भरी थी। संभालना या कंट्रोल करना माँ? रम्या ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे भैया छोड़ो ना, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। लेकिन विशाल अब रुकने वाला नहीं था। नहीं रम्या, आज बात होगी, माँ हमेशा यही करती हैं, हर बार हर चीज़ में दखल। शकुंतला ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का दर्द था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं, विशाल ने थोड़ा झुककर कहा, लेकिन आप हमें खुद बनने नहीं देती। टेबल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रम्या आप चुप थी, उसने अपनी आइसक्रीम का एक छोटा सा बाइट लिया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ माँ और भाई पर था। शकुंतला ने धीरे से रम्या का हाथ पकड़ा और फिर विशाल की तरफ देखा। तुम दोनों मेरे लिए क्या हो, ये तुम समझते नहीं हो, तो समझाइए ना, विशाल ने तुरंत जवाब दिया। शकुंतला की आंखें कुछ पल के लिए कहीं दूर चली गईं, जैसे वो किसी पुराने वक्त में खो गई हों। जब तुम दोनों बहुत छोटे थे ना, तब मैं हर रात यही सोचकर सोती थी कि अगली सुबह तुम्हें हंसता हुआ देख पाऊंगी या नहीं। विशाल का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। क्या मतलब? मतलब ये, शकुंतला की आवाज़ और धीमी हो गई, जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी जितनी अब दिखती है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है। रम्या ने धीरे से पूछा, क्या खोया माँ? शकुंतला ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान आई लेकिन उसमें दर्द साफ था। अपनी आज़ादी, अपने सपने और भरोसा। विशाल ने भौहें से कोड़ ली, भरोसा किस पर? शकुंतला कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, लोगों पर। उसने सामने बैठे उस लड़के की तरफ एक बार फिर देखा, जो अब भी कभी कभी रम्या की तरफ नजरें डाल रहा था। तुम्हें वो लड़का सिर्फ देखता हुआ लगा, लेकिन मुझे उसमें वो सब दिखा जो तुम नहीं देख पा रहे।
क्या? विशाल ने थोड़ा झुंझलाकर पूछा। इरादे, शकुंतला ने सीधा जवाब दिया। माँ, हर लड़का खराब नहीं होता। विशाल की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मैंने ये नहीं कहा, शकुंतला ने भी इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, लेकिन ये भी सच है कि हर कोई अच्छा नहीं होता। रम्या अब थोड़ा असहज हो गई थी। माँ प्लीज, मुझे तो वो बस नॉर्मल लग रहा था। आज नॉर्मल लगता है, शकुंतला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कल वही इंसान तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तो क्या करें हम? विशाल ने दोनों हाथ फैला दिए। घर में बंद होकर बैठ जाएं? नहीं, शकुंतला ने तुरंत कहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम समझदारी से जियो, बिना किसी खतरे के। लेकिन खतरा तो हर जगह है माँ, विशाल ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। आप हमें डराकर नहीं बचा सकती। ये बात शकुंतला को चुप कर गई। कुछ पल तक वो बस विशाल को देखती रही, फिर धीरे से बोली, शायद मैं डरती हूँ। रम्या ने हैरानी से पूछा, आप? हाँ, शकुंतला की आंखें अब नम हो गई थी। मैं हर उस चीज से डरती हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है या तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। विशाल का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह पिघला नहीं था। लेकिन माँ, ऐसे तो आप हमें खुद से ही दूर कर रही हैं। ये सुनकर शकुंतला का दिल जैसे एक पल को रुक गया। रम्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, माँ हम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन हमें थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि हम खुद सीख सकें। शकुंतला ने दोनों बच्चों को देखा, एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ बच्चों की बढ़ती उम्र और उनकी आजादी की चाह। उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। विशाल ने थोड़ा चौंक कर देखा, सच? हाँ, शकुंतला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तुम दोनों भी वादा करो कि कोई भी बात छुपाओगे नहीं मुझसे। रम्या ने तुरंत कहा, पक्का। विशाल ने भी कुछ सेकंड बाद सिर हिलाया, ठीक है डील। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। रम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। तीनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन तभी वो लड़का उठकर उनकी टेबल के पास आ गया। तीनों की नजरें उसकी तरफ गईं। एक्सक्यूज मी, उसने झिझकते हुए कहा, मैं बस ये कहना चाहता था कि आपकी बेटी बहुत क्यूट है और मैं बस बस, शकुंतला ने बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी और सख्त थी। लड़का थोड़ा घबरा गया, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था।
जो भी मतलब था वो यहीं खत्म हो गया, शकुंतला ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ सेकंड के लिए माहौल फिर से भारी हो गया। लड़का बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रम्या ने धीरे से कहा, माँ आपने फिर वही किया। शकुंतला ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने बस इतना कहा, चलो घर चलते हैं। विशाल ने कुर्सी पीछे खिसकाई, हाँ शायद यही बेहतर है। तीनों वहां से उठकर बाहर निकल गए, लेकिन इस बार उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। कार में बैठते ही रम्या ने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया और विशाल ने अपने फोन में नजरें गड़ा ली। शकुंतला ड्राइव कर रही थी लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं सच में अपने बच्चों को बचा रही हूं या उनसे उनका बचपन छीन रही हूं। सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ती रही और उनके रिश्ते में एक नया मोड़ चपचाप आकार लेने लगा।